नेक्स्ट सेशन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को। प्लीज डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे इस मेडिकल विंग के यंगेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं और आप फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी में काम करते हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड जीबी पंत हॉस्पिटल से किया है और आपका स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही इंटरेस्ट है। बचपन से ही इन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी को स्पेशली राजयोगा मेडिटेशन को अपनाया है और लगभग पिछले 20-25 साल से ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और इनको आगरा रत्न अवार्ड भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने 2006 में दिया है और आपको 2005 में जीबी पंत हॉस्पिटल ने ही आपकी अच्छी सर्विसेज के लिए आपको नवाजा है। आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मेडिकल साइंस में यूज़ करें अच्छी तरह से तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बहुत अच्छी बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को बोलूँगा कि आप अपना वक्तव्य करें। बहुत बिजी रहते हैं, आपको मालूम है मेट्रोपोलिस सिटी में दिल्ली बॉम्बे जैसी लाइफ सिटी में कैसी लाइफ होती है बिजी, तो वही आप बताएंगे कि बिजी होते हुए भी कैसे इजी रहना है ये आपको बताएंगे। आज का टॉपिक है इजी लाइफ फॉर द बिजी डॉक्टर। डॉक्टर मोहित गुप्ता,
ओम शांति एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी अच्छी सी बातें अभी हम लोग सुन रहे थे। डॉक्टर गिरीश पटेल जब बातें बताते हैं, हम लोग छोटे थे जब से हम उनको देख रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी नई नई बातें जिनको सुनकर कई बार हमारे रोटे खुद के खड़े हो जाते हैं और मन करता है सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। आप लोगों के भी कुछ भाई बहनों के हमने अनुभव सुने और उन सबको सुनते हुए मुझे केवल 2 या 3 बातें अभी आपके समक्ष कहना ध्यान आता है और वो पंक्तियाँ इस तरह जाती हैं कि जिंदगी के हर लम्हे में खुशी है, जिंदगी के हर लम्हे में खुशी है, जिंदगी के हर पल में प्यार है, जिंदगी के हर लम्हे में खुशी है, जिंदगी के हर पल में प्यार है। अगर खो दो तो यादें बन जाती हैं और अगर जी लो तो जिंदगी बन जाती है। तो जिंदगी में कभी ये मत देखिए कि कितने पल हैं, लेकिन हर पल के अंदर हम कितनी जिंदगी, कितनी खुशियां भर देते हैं अपनी भी और दूसरे व्यक्तियों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। इस पर हमको अपनी जिंदगी में गौर फरमाना चाहिए। सभी खुश रहना चाहते हैं ना। दादी ने भी आज सवेरे बोला, 4 बातों में समराइज किया। सभी क्या चाहते हैं आखिर में? हम लोग खुश रहें, जिंदगी में शांति रहे, बताइए। यही चाहते हैं सभी लोग, हाँ या नहीं? सभी लोग चाहते हैं और यही हमें कर जाना है। अगर हम लोग, मैं कल की ही बात आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे मम्मी डैडी, मेरी सिस्टर, हम सभी लोगों को कल इकट्ठे यहाँ पर आना था दिल्ली में। कल मेरा बाय चांस ऑपरेशन डे होता है, मेजर मुझे ऑपरेशन करने होते हैं, तो 8 बजे की ट्रेन होती है और करीब 5 बजे मैंने एक केस लास्ट लेटाया कि मैंने कहा इसको करके मैं निकल जाऊँगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता चला गया और अल्टीमेटली इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि 7 बजे जब मैं कर रहा था तो मैंने अपने असिस्टेंट को और अपनी टीम को कहा कि घर पे मैसेज दीजिए कि मेरे लिए आज जाना असंभव रहेगा। फिर चल रहा था, जैसे तैसे उसको मैनेज करके बिल्कुल ठीक हुआ पेशेंट, हमने करीब 8 बजे बाहर निकाला। मैं इंजॉय कर रहा था, कल मुझे बिल्कुल भी इतना भी तनाव नहीं था। ये नहीं कि मेरी ट्रेन छूट गई, सब चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये खुशी थी कि मैंने करते हुए भी एक्सपीरियंस लिया और एक जान बचाई जो कि ऑलमोस्ट जा रही थी। 8:30-9 बजे जब मैं बाहर आया तो बाकी केसेस भी बचे थे, मैंने अर्जेंटली फ़ोन किया और अपनी आज मॉर्निंग की 5:30 बजे की टिकट बुक कराई अहमदाबाद की। बनारसी भाई को फ़ोन किया कि भाई साहब मैं लेट हो जाऊँगा। रात को 1 बजे मैं घर पर पहुँचा, डिनर किया, रिलैक्स किया, परमात्मा के कमरे में जाकर उसे धन्यवाद किया कि आज का दिन अच्छा गया, किसी की ज़िंदगी ही बची। और सवेरे उठकर अहमदाबाद पहुंचकर मैं गाड़ी में बैठकर यहां पर आ गया और मैं देख रहा हूं, अगर मैं पूरे एक दिन का भी ड्रामा देखता हूं तो आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों की लाइफ तो आज इतनी बिजी हो ही गई है। ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। एंड एक्चुअली आप देखिए कि जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन जो लाना चाहते हैं वो हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तो बाहर कभी भी चेंज नहीं आ सकता। देखिए कितनी सिंपल बात है कि एक हॉट एयर बलून होता है, बलून कब उड़ता है? जब उसके अंदर गैस जो है वो अंदर से जाती है, उसको बाहर से पकड़कर कभी भी कोई उड़ा नहीं सकता। तो यदि हम लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, सब लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, लेकिन वो चेंज लाने के निमित्त कौन बनेगा? क्या दूसरा व्यक्ति चेंज होगा या हमें चेंज होना पड़ेगा? बताइए सभी लोग, हमें चेंज होना पड़ेगा। और हम जब अपने चेंज की बात करते हैं तो वो चेंज को लाना हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और हम लोगों की लाइफ में तनाव क्यों आ जाता है? क्योंकि दूसरा व्यक्ति ऐसा करता है, वो चेंज नहीं होता, उसने ऐसा किया, लेकिन हम लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ कि एक बारी एक मंदिर के अंदर जमीन पर भी संगमरमर लगा हुआ था और एक मूर्ति बहुत ही सुंदर देवता की, वो भी संगमरमर की बनी हुई थी। तो जमीन पर लगा जो पत्थर था वो मूर्ति पर लगे पत्थर से बोला कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा देखो मित्र, हम दोनों सेम ही खान से आए हैं, जिस जगह मैं पैदा हुआ था या मेरे को तराशा गया था उसी जगह तुम भी निकले थे, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि आज मैं मंदिर में जमीन पर लगा हूं और तुम एक सुंदर मूर्ति का रूप लेकर ऊपर लगे हो? लोग आते हैं मेरे ऊपर तो पांव रखते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारे को माला पहनाते हैं, ऐसा क्यों है? तो जो मूर्ति थी वो मुस्कुराते हुए अपने मित्र से बोली कि मित्र ऐसा है कि तुम्हें याद होगा जब हमको इस दुनिया में लाया गया, इस मंदिर पर लाया गया, तो हम लोगों को तराशा जा रहा था, और तराशा जब हमें जा रहा था तो हमको हथौड़ा मारा जा रहा था, हमको छेनी मारी जा रही थी, तो मैंने उस दर्द को सहन किया और मैं उस दर्द को सहन करते करते एक सुंदर मूर्ति का रूप ले लिया, लेकिन जब तुम्हें हथौड़ा मारा गया तो तुमने मॉडिफाई होने के लिए यानी उस सहन को करने के लिए मना कर दिया और तुम एकदम क्रैक हो गए, तो तुमको इसलिए जमीन पर लगा दिया गया और मुझे वो कष्ट सहन कर करके एक सुंदर मूर्ति का रूप देकर आज मैं ऊपर स्थापित हूं। तो यही हमारी जिंदगी की भी खासियत है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो वी मस्ट बी द चेंज व्हाट वी विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। अच्छी बातें सुन रहे हैं ना सभी लोग, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको या हमको आकर यह कहे कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन क्या हम वो जिंदगी जीते हैं, वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप सभी को बातें मालूम है ना कि ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, पर क्या वो हो पाता है या नहीं हो पाता? सच्ची बताइए, हो पाता या नहीं हो पाता? वो नहीं हो पाता। वो कहेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर मेहता का लेक्चर सुना, आपका लेक्चर सुना, डॉक्टर गिरीश पटेल का सुना, डॉक्टर प्रेम मसंद का सुना, सबका हमने सुना, हमें इतनी एनर्जी आ गई, हमें लगा कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम लोग अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, अपने कार्य व्यवहार पर जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? वही रूटीन आ जाता है। क्या बताएं, उस जंजाल से बाहर निकल ही नहीं पाते, वही टेंशन वही आ जाता है। तो अगर हमको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा तो शास्त्र पढ़ने से, धर्म वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं आएगा। परमात्मा यह कहता है कि अपने जीवन को ही शास्त्रमय बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को ही इतना सुंदर संगीत बनाना पड़ेगा कि जब आप बोलें, जब आप सोचें, आपका सोच भी ब्रह्मा कुमारी में बहुत सुंदर, दादी एक बात क्या बोलती हैं कि लोग कहते हैं आप बोलने से पहले सोचो, लेकिन परमात्मा ये कहता है कि आज का समय तो ऐसा है कि आप अपने सोच से पहले भी सोचो कि जो मैं सोच रहा हूं वो मेरे लिए भी कल्याणकारी होगा और सब लोगों के लिए भी कल्याणकारी होगा या नहीं। क्योंकि आज क्या होता है, हम लोग सोचते तो नहीं है, बोल देते हैं, बोलने के बाद कर्म में ले आते हैं और फिर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो जाता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जब हम देखते हैं कि एवरीथिंग अपीयर्स टू चेंज व्हेन वी चेंज इन आवर लाइफ। तो परिवर्तन, केवल फोकस इधर उधर उसने चेंज नहीं होना, यहां से जाके आप सबको केवल एक मैसेज लेकर जाना है कि ये परमात्मा मैसेज देता है, चेंज मुझे, परिवर्तन मुझे अपने अंदर लाना है। मानते हैं सभी लोग, बताइए हाँ या नहीं, हाथ उठा के बताइए, एग्री हाँ या नहीं बताइए। करना है, केवल मुझे चेंज करना है तो सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आजकल समस्याएं क्या हैं कि आज साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, बड़ी बड़ी दवाइयां बन गई हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, नए रिसर्च मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, लेकिन साइंस आज ऐसी कोई भी दवाई, कोई भी चीज़ नहीं बना पाई कि हम लोग अपने ह्यूमन इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाए, अपने ह्यूमन इमोशंस को प्रैक्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर पाए। आज आप देखेंगे कि नए नए एडवांस्ड गैजेट्स आ गए हैं, ऐसी चीज है कि बटन दबाएंगे तो यहाँ बैठे हम लोग किसी से अमेरिका बात कर लेते हैं, किसी से कनाडा बात कर लेते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग सोचें कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने लिए समय निकालकर अपने आप से दो मिनट बातें करें, तो जवाब ये आता है कि अरे भाई समय की बात करते हो, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, किसके लिए टाइम निकालें, टाइम है ही नहीं हमारे पास। आज का समय ऐसा आ चुका है कि आज हमारे पास खूब कन्वीनियंसेस हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आज हमारे पास उसको एंजॉय करने का समय नहीं है। बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जीवन में जाएं, उन खुशियों में जाकर हम लोग उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएं, उसका समय हमको नहीं मिल पाता है। तभी बहुत सुंदर रूप से एक व्यक्ति क्या कहता है कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, पर आज माँ को माँ कहने का हमारे पास वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में, पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े, पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े कि थकने का भी हमारे पास वक्त नहीं। आंखों में है नींद भरी, आंखों में है नींद भरी, पर सोने का भी हमारे पास वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या बात करें, पराए एहसासों की क्या बात करें, जब अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं। तू ही बता है जिंदगी, जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं। यही हमारी जिंदगी की आज कहानी बन चुकी है। सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग भागते रहते हैं, हम लोग दौड़ते रहते हैं। आप कृपया स्लाइड्स को ही चलने दीजिए। भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसी चीज के अंदर आप देखिए अपने ही रूप से एक टारगेट बनकर रह गया है। हम लोग जिस चीज के पीछे भागते हैं, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आज अमीर से अमीर व्यक्ति भी परमात्मा के मंदिर में जाके क्या मांगता है, उससे धन मांगता है या उससे कहता है हे भगवान मुझे शांति दे दो, मुझे खुशी दे दो, मुझे मेरी जिंदगी के अंदर प्यार दे दो, मुझसे सब कुछ लो, लेकिन मैं एक खुशनुमा जीवन जीऊं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हम लोग कहते हैं कभी कि लीजिए 5,000 रुपये, लीजिए 5 किलो प्यार बाजार से खरीद लाइए। हो सकता है या नहीं बताइए, जल्दी से बताइए हाँ या नहीं, पक्का? कभी हम लोग सोच सकते हैं कि लीजिए 10,000 रुपये, लीजिए 10 किलो शांति बाजार से खरीद लाइए। हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। तो जो चीज हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं वो हमको आज नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी ही लाइफ को बहुत 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 कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। केवल आज से पहले भी जिंदगी बहुत सुखनुमा, बहुत शांतमयी होती थी, लेकिन आज जिंदगी में वो सारी चीजें हमसे दूर 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 चली गई हैं। ऐसे बड़ी सुंदर सी बात आती है कि एक गरीब व्यक्ति था, खुश रहता था, एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, जगह जगह जाकर काम करता था। तो एक बारी वो काम कर आराम मस्त सो रहा था, तो जब वो पेड़ की छांव में खा पी कर आराम से सो रहा था, तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे बोला, अरे उठो, सो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, आज मैंने बहुत काम किया और बड़ा खुश हूं मैं, खूब मेरी कमाई हुई, अब मैं आराम कर रहा हूं। उसने कहा, नहीं, तुम और काम करो। तो उसने कहा और काम करने से क्या होगा? उसने कहा जब तुम और काम करोगे तो तुम्हारे पास और धन आएगा। तो उसने कहा उससे क्या होगा? जब तुम्हारे पास और धन आएगा तो तुम और पैसा कमा सकते हो, तुम्हें जगह जगह जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी दुकान बना सकते हो और अपने साथ और व्यक्ति भी रख सकते हो। तो उसने कहा उससे क्या होगा? कहते हैं फिर तुम्हारे पास और पैसा आएगा, तुम आज पेड़ की छांव में छो रहे हो, तुम एक बड़ा मकान बना सकते हो। तो उसने कहा उससे क्या होगा? फिर कहता है जब तेरा मकान बन जाएगा, उसमें बढ़िया तेरा कमरा होगा, उसके अंदर एसी होगा, तू शांति से अपने बिस्तर पर शांति की नींद सो सकेगा। तो उसने कहा वो तो मैं अभी भी सो रहा था, तूने आके मुझे जगा दिया। अरे भाई मैं नेचुरल नींद में नेचुरल एयर कंडीशनर में सो रहा था, तो इतना ही काम करके अगर मुझे यही सरदर्द मोलना है तो मैं किस चीज के पीछे भागूं? तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कमाना नहीं है, कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रोग्रेस नहीं करना, लेकिन उस रेस के अंदर कहीं मैं अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट ना कर दूं, इतना मैं उस जाल के अंदर ना बुन जाऊं कि मेरे को जीवन की खुशियों को, जैसे मैंने बताया ना हर पल के अंदर खुशी और प्यार है, उसको इंजॉय करने का टाइम ही मेरे को ना मिले। होता है सभी के साथ, मेरे साथ तो कभी कभी हो जाता है। मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि कहां हो गए यार जिंदगी की वो खुशी, कहां चली गई? होता है या नहीं बताइए? मैं तो कई बार अपने असिस्टेंट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने रेजिडेंट्स को यही बोलता हूं, और बड़ी सुंदर सी बात बोलता हूं कि भाई कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल वो आवारा था, कहां आ गए समझदारी की दलदल में वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। भागते भागते दौड़ते दौड़ते लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हमने कर ली है कि किस चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं? जीवन से वो खुशियां ही निकल जाती हैं और अंदर से एक खोखलापन आप देखो रह जाता है, अंदर से एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रह जाती है। तभी आजकल आप देखेंगे, अभी मैं लास्ट वीक एक ऑडियंस को संबोधित कर रहा था और मैं यही बोल रहा था कि आज से करीब 4-5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं, 4-5 साल पहले 3 प्रकार के स्ट्रेस माने जाते थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रेस। अब जो नई एंटिटी आ गई है वो एंटिटी आ गई है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। स्पिरिचुअल स्ट्रेस अर्थात किसको माने, कैसे माने, कौन हमको सुख देगा, कौन हमको शांति देगा। हर व्यक्ति दर दर, मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे मस्जिद जाकर भटकता है, लेकिन जीवन के अंदर ये अधूरापन, ये खोखलापन, ये परमानेंट बन गया है। हमारे जीवन के अंदर अगर आज हम लोग खुशियां ढूंढते हैं तो खुशियां हम ढूंढते हैं मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के बीच रूप में, वो आगे हम जाके बात करेंगे। तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को रिलैक्स बनाना चाहते हैं, कल परसों जाना तो सबको अपने कार्य व्यवहार पर है ना, लोग कहते हैं भाई हिमालय पर जाकर तो वैसे ही शांति का अनुभव हो जाता है, तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो जब मैं एंटर भी करता हूँ तो ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं, ऐसा लगता है अब बस मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, लगता है ना सभी को कि हाँ मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। लेकिन कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा कर जाएं, कुछ ऐसी सोच के अंदर हम लोग परिवर्तन करके जाएं कि हमारी सोच ही ऐसी पॉजिटिव हो जाए कि हम लोग अपनी जिंदगी को और हमारे साथ जो भी व्यक्ति कांटेक्ट में आता है उसकी जिंदगी को भी हम खुशनुमा बना दें। हमको जरूरत ना पड़े किसी के लेक्चर की, केवल परमात्मा को अपने जीवन के अंदर लाके हम ऐसा परिवर्तन लाएं कि हमारी जिंदगी एक खुशियों का सागर बन जाए, एक ऐसा लाइफ बन जाए कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाते हैं। बताइए सभी चाहेंगे या नहीं? हाँ या नहीं? सभी चाहेंगे, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा। तो इसके लिए कोई बड़े बड़े परिवर्तन नहीं करने, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सी बातें बताऊंगा, उसके आंसर भी आप ही लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारी और आपकी अपनी कहानी है, ये कोई नई किसी और लोगों की कहानी नहीं, हम सभी लोगों की कहानी है। तो क्या क्या परिवर्तन हमको अपनी जिंदगी के अंदर करने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक बात जो मैं भी हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखता हूं कि जिंदगी एक बांसुरी की तरह है, लाइफ इज लाइक अ फ्लूट, इट हैज मैनी होल्स एंड एम्प्टीनेस इन इट। बांसुरी के अंदर आप देखेंगे ना खोखलापन भी होता है और उसके अंदर सुराख भी होते हैं। अगर मैं और आप बांसुरी बजाएं तो बजा पाते हैं या नहीं बजा पाते? बताइए बजा पाते हैं या नहीं बजा पाते? हम लोग नहीं बजा पाते। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति जिसके हाथ में वो बांसुरी आ जाए, वो उन होल्स और एम्प्टीनेस को बड़ी सुंदर रूप से बजाए, तो क्या निकलता है? बड़ा सुंदर म्यूजिक आ जाता है. इट प्लेज मैजिकल मेलोडीज. तो हम सभी की जिंदगी के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोखलापन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर आएगी या जरूर होती ही होती है. बट इफ वी वर्क अपॉन देम वेरी नाइसली एंड इन अ ब्यूटिफुल वे, देन वी कैन प्ले मैजिकल मेलोडीज. हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सुंदर रूप से धुने निकाल सकते हैं. तो पहला स्टेप जो मैं समझता हूं अपनी लाइफ के अंदर हमको अपनाना है, हम सभी लोगों को अपनाना है, वो है अपनी लाइफ को लेस कॉम्प्लिकेट करना है. डी क्लटर योर सेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज की जिंदगी जो है वो हाई टेक बन चुकी है ना. बहुत सुंदर बात आज से करीब 50-60 साल पहले आइंस्टाइन ने कही थी, और उसने क्या कहा था, आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी ओवरलैप्स विद अवर ह्यूमैनिटी. आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी ओवरलैप्स विद अवर ह्यूमैनिटी, द वर्ल्ड विल हैव ओनली अ जनरेशन ऑफ इडियट्स ऑन दैट डे. एंड दैट इज व्हाई आज आप देखेंगे आज हर कोई आईफोन, आईपैड, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक. वही परसों बड़ा सुंदर बात, सुंदर मैसेज मेरे पास आया, और वो मैसेज इतना मजेदार था कि मेरी चेहरे पर स्माइल आ गई. और उसमें ये कहा गया कि आजकल उसी व्यक्ति का सर ऊंचा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, आजकल उसी व्यक्ति का सर ऊंचा रहता है जिसके पास फेसबुक, इंटरनेट और व्हाट्सएप नहीं होता. क्यों? क्योंकि बाकी लोग लगे रहते हैं ऐसे 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 लगे रहते हैं पूरे. तो ये बात मैंने देखा कि हमारी लाइफ के अंदर भी ट्रू होल्ड करती है. सवेरे से लेकर शाम तक कोई अपडेट कर रहा हो, किसी ने क्या मैसेज किया, किसी ने क्या मैसेज किया. मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि भाई व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, नवरात्रे का रखते हो, कोई मंगलवार, कोई बृहस्पतिवार, लेकिन इन सब व्रतों से ज्यादा अब परमात्मा एक ऐलान करने वाला है, और वो ये कहने वाला है कि तुम सब व्रत रखो ना रखो कोई फर्क नहीं, केवल एक दिन अगर तुमने एक व्रत रख लिया तो तुम्हारी सारी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है मैं मान जाऊंगा तुम बिल्कुल यूनिक बीइंग हो. वो व्रत रखना है मोबाइल व्रत, और वो मोबाइल व्रत ऐसा व्रत है कि उस दिन आपको मोबाइल को बंद करके साथ में रख देना है. फिर आप देखिए क्या आप रख पाते हैं नहीं. हमारी लाइफ जो है आज इतनी हाई टेक बन चुकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बुरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारी लाइफ के अंदर हाई टेक के साथ साथ हाई टच जो है, जो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन टच है, वो खत्म हो चुका है. सब कुछ मैकेनिकल है. मेरे पास ये मशीन है, मैं इससे एक सेकंड में ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, ये डायग्नोज हो जाएगा. मेरा मानना ये है, मेरा ये स्ट्रांगली आज भी मानना है कि हीलिंग जो होती है या किसी भी व्यक्ति का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो दवाइयों से, मशीन डायग्नोसिस से बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले हीलिंग चालू होती है जब हम किसी भी पेशेंट जो है किसी भी डॉक्टर से इंटरैक्ट करता है. और इसको मैं आपके समक्ष अभी प्रूफ कर देता हूं. आप सभी भाई बहनों से मैं पूछना चाहूंगा कि कई बारी हम लोग बीमार होते हैं, कई बारी कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है. हम ये नहीं कहते कि इस व्यक्ति से, इस डॉक्टर से बात करते ही मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है. बताइए, या आप डॉक्टर हैं तो आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे. होता है या नहीं होता बताइए, यस और नो? सभी के साथ होता है या नहीं होता है? अब क्या होता है कि जब हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, व्हेन वी क्रिएट दोस पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड हीलिंग वाइब्रेशंस, सो बिफोर मेडिसिन स्टार्ट्स वर्किंग वी हैव अ ब्यूटिफुल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. हम एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वाइब्रेशंस देते हैं. और ये साइंस प्रूव कर चुका है कि पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को बैलेंस कर देती है, और जो एक्स्ट्रा एडीआर टाइप हॉर्मोन्स होते हैं उनको वो शांत कर देती है. तो उस व्यक्ति का बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है और पल्स रेट होती है वो ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाती है. सो द हीलिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट. जब हम किसी से बात ही करते हैं तभी हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लग जाती है. तो आज हम सब लोगों को अपनी लाइफ के अंदर डॉक्टर होना जरूरी नहीं है किसी को ठीक करने के लिए, लेकिन केवल एक एटीट्यूड होना जरूरी है. तो अगर हम लोग आज अपनी जिंदगी के अंदर खुशी चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर ईजीनेस चाहते हैं, तो ईजीनेस लाने के लिए अपने मन को चैनलाइज करना बहुत जरूरी होगा. ये जरूरी नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर क्वांटिटी अचीव करूं, लेकिन क्वांटिटी से एक मच मोर इंपॉर्टेंट होता है मैं अपनी जिंदगी के अंदर क्वालिटी को अचीव करो। हमारे प्रोफेसर यही कहते थे कि दिन के अंदर 40 ऑपरेशन या 60 ऑपरेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि कितनी ब्यूटी से आप एक एक केस को आर्टिस्टिकली ठीक करते हैं। और मेरा मानना है कि हम सभी लोग जो हैं, हम सभी भाई बहन जो हैं, हम हमारे अंदर एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट है। और वो आर्टिस्ट कैसा है? वो आर्टिस्ट जो होता है, वो आर्टिस्ट स्टार्ट होता है हमारे थॉट प्रोसेस से। जो व्यक्ति सुंदर सोचता है वो ऑटोमेटिकली सुंदर बोलता है, और जो व्यक्ति सुंदर सोचता है और सुंदर बोलता है ऑटोमेटिकली उसके कर्म जो होते हैं वो बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर चूज योर लाइफ। अपनी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं इतनी बिजीनेस ला दीजिए, इतना ले लीजिए कि हम लोग अपनी लाइफ का कंफर्ट, लाइफ की शांति खो दें। जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स की ही नहीं सभी की लाइफ कैसी होती है कि आज जिंदगी का एक्सलेटर दबता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ, और रात को आके ब्रेक लग जाता है एल्प्रेक्स की गोली के साथ। हर व्यक्ति दौड़ता है बस सूं करके निकल जाते हैं, और रात को वो तलवार लेकर ही लड़ते लड़ते वापस आ जाते हैं, थक कर सो जाते हैं, और जिंदगी एक जंग की तरह बन गई है। जीतना है, भागना है, आगे बढ़ना है, उसको पछाड़ना है। इसके पास ये गाड़ी है तो कल मेरे आंगन में इससे बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। इसका 2 कमरों का फ्लैट है तो 1 साल के अंदर आप देखना मैंने 4 कमरों का फ्लैट नहीं ले लिया तो मैं ये नहीं हूं। लेकिन इससे हमारी जिंदगी की खुशी नहीं गेज की जाती। तभी कहते हैं ना कि एक पेड़ हमें चाहिए एक फॉरेस्ट को स्टार्ट करने के लिए, एक स्माइल चाहिए हमको फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए, एक कैंडल चाहिए हमको अंधेरे को मिटाने के लिए। 100 मोमबत्तियों का काम नहीं है, अगर एक व्यक्ति भी हम लोग अपने मन की ज्योति को जगा लेते हैं तो एक व्यक्ति की ज्योति जगती है तो कैंडल की क्या ब्यूटी होती है? कैंडल की ब्यूटी ये होती है वो दूसरे को भी जला जला कर अंधेरे को बुझा देती है। तभी कहते हैं ना कि अंधेरा मिटाने के लिए एक बात तो हमें सीखनी होगी, मोमबत्ती से क्या सीखनी होगी कि अंधेरा मिटाने के लिए किसी को तो जलना ही होगा। तो हमें अपने अंदर वो परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील करना ही होगा। दूसरी एक्सरसाइज जो हम सभी लोगों को करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, वो है फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेटरेड। आज दादी ने क्या बोली, 4 बातों में से बहुत सुंदर बात है कि हमारे दिल के अंदर हर व्यक्ति के लिए प्यार होना चाहिए। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा मानना यह है कि दिल एक ऐसा सुंदर ऑर्गन है और कुछ काम कर भी दे या ना भी कर दे, लेकिन जब से मानव इस सृष्टि पर जन्म लेता है और जब तक वो प्राण छोड़ता है एक ही चीज़ हमेशा चलती ही रहती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, वो क्या है? वो है उसका दिल, और वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता रहता है। तो अगर हमारे दिल के अंदर नफरत होगी तो वो कैसी एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगा? वो नेगेटिव एनर्जी को पंप करता चला जाएगा। और अगर हमारे दिल के अंदर हर व्यक्ति के लिए प्यार है, हर व्यक्ति के लिए सम्मान की भावना है, हर व्यक्ति के लिए प्रेम है, शांति है, तो हमारे अंदर से कैसी फीलिंग अमिट होगी? आप बताइए कैसी फीलिंग अमिट होगी, कोई भी बताइए। आप केवल इस चीज को यहां पर ही अपने अंदर इमेजिन करिए कि मेरे दिल के अंदर कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति है, उसके लिए मैं केवल प्यार की भावना रखता हूं, केवल खुशी की भावना रखता हूं। तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू आई एमिट, पॉजिटिव और नेगेटिव? सच बताइए, बताइए। पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है, वो एनर्जी चाहे दूसरे व्यक्ति तक जब भी जाए वो बात सेकेंडरी है, लेकिन जब वो मुझसे एमिट होती है तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आती है? मुझे कैसी फीलिंग आ रही है जब मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर प्यार है हर व्यक्ति के लिए? कैसी फीलिंग आती है, कैसी फीलिंग आती है? बहुत खुशी की, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत एनर्जेटिक फीलिंग आती है, अंदर से ऐसा लगता है लाइफ के अंदर एकदम कूलनेस आ जाती है। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति कैसी भी नफरत की भावना रखे, कोई भी चीज़ कैसी भी हमारे लिए रखे, लेकिन हम लोगों को अपने दिल के अंदर क्या रखना है, व्यक्ति के लिए क्या रखना है, क्या रखना है, आज के बाद प्यार रखना है। देखिए तभी कहते हैं ना कि मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड forgives. ये बहुत सुंदर बात है कि हर व्यक्ति के लिए अगर हम लोग अपने दिल के अंदर प्यार की भावना रखेंगे, तभी कहते हैं ना, हार्ट इज अ वेरी फर्टाइल प्लेस. वॉट एवर यू पुट इन इट, इट विल ग्रो. वाई इट विल ग्रो? बिकॉज इट पंप्स इट थ्रू आउट योर होल बॉडी. वेदर यू पुट लव इन इट और वेदर यू पुट हेट्रेड इन इट, ये चॉइस हमारे पास आज है. तो अगर हम लोग जब यहां सर जाएं, हम लोग केवल एक चीज प्रैक्टिस करें, किसी व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ नेगेटिव कहा, कोई चीज कही, लेकिन परमात्मा ने मुझे क्या दिया है? परमात्मा ने कहा है, तू मेरी एक सुंदर संतान है, तू प्यार के सागर की संतान है. हम कहते हैं ना, हे परमात्मा, तू मेरा पिता है, तो यदि मैं उसका बच्चा हूं तो उसकी सारी एनर्जी का मालिक मैं ऑटोमेटिकली बन जाता हूं. तो आप जब भी आपको कोई नेगेटिव व्यक्ति दिखे, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास दिखे, तो वो उसकी फीलिंग है, उसके कर्म है. लेकिन हम तो परमात्मा की यूनिक संतान है ना, तो अपने लाइफ के अंदर से उसको केवल पॉजिटिव एनर्जी आज के बाद दीजिएगा. उसके सामने नहीं भी होंगे, केवल यहाँ बैठे बैठे भी, केवल शांति के अंदर. हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे ना अभी, गिरीश भाई करा रहे थे आपको, केवल शांति के अंदर अलर्ट होकर केवल 5 सेकंड के लिए सीधे बैठिए और अपने मन के अंदर केवल एक संकल्प लाइए कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति मुझे अपने जीवन के अंदर मिले, यदि वो मुझे नफरत देता है, मेरा जीवन परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, मैं परमात्मा की संतान, मुझे अपने दिल के अंदर हर व्यक्ति के लिए प्यार रखना है. तो कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आप सोचिए जिसने आपके लिए बुरा किया, उसको केवल क्षमा दीजिए और प्यार की एनर्जी दीजिए, उसको केवल पॉजिटिव एनर्जी दीजिए. अपने मन से जब हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी. तो एक एक मिनट की ये एक्सरसाइजेस हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ के अंदर करते रहें. जैसे किसी ने कहा, इसने ऐसा कहा, ये बुरा है, उस पे सुनिए नहीं. हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को जल्दी ग्रहण करते हैं. मजा आता ना, किसी ने कहा कि अरे आपको पता है उसने ऐसा किया, कितना बढ़िया काम उसने किया, अरे रहने दो, वैसे ऐसा है नहीं वो, मैं तुम्हें बताता हूं, उससे आज से 5 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था. ऐसी बात हो जाएगी. लोग कहते हैं 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, और हम लोग कहते हैं भाई कोई बात नहीं, 100 चूहे खाके ही चली, कम से कम चली तो सही, तुम तो वो भी नहीं चल रहे. तो चलना तो बहुत जरूरी है ना. तो लाइफ में अगर हम लोग यही कहते रहेंगे कि बहुत ये किया इसने, बहुत किया, अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी हम लोग एमिट करते हैं तो करना तो चाहिए ना हमको, ये नहीं करना चाहिए. 100 लोग नहीं करें तो हम भी नहीं करें, ये गलत हो जाता है. तो जब भी हम यहां से जाएं, दूसरी एक्सरसाइज जो हम सब लोगों को करेंगे या नहीं करेंगे, सभी लोग करेंगे या नहीं करेंगे, दिल के अंदर प्यार है ना. बस यहां पर हमें दिल के अंदर प्यार समाना है. ऐसा नहीं लेडीज कहें मेरी बेटी ये नहीं करती, मेरी बहू ये नहीं करती, जेंट्स कहते हैं मेरा बेटा ये नहीं सुनता, बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप ये नहीं सुनते. केवल प्यार, क्योंकि प्यार की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो बड़ी सी बड़ी चीज को भी पिघला देती है. परमात्मा आता है तो क्या डंडा लेकर आता है? वो डंडा लेकर नहीं आता, पहले वो प्यार से हम बच्चों को समझाता है. और तीसरी एक्सरसाइज जो हमको करनी है, फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज, है ना. दिल के अंदर प्यार और मन से चिंताओं को मुक्त कर देना है ना. कहते हैं ना, बड़ी सुंदर बात कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया. तो जिंदगी को आसान कर दीजिए, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही क्या है. मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल और सुंदर कहानी एक बारी बताता हूं, और उसको हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखिएगा. एक बारी दो भिक्षु जा रहे थे, जब जा रहे थे तपस्या करते थे, तो रास्ते में नदी पार करने का जब टाइम आया तो उनमें से एक भिक्षु ने देखा कि एक कन्या जो है नदी के बीच में फंसी हुई है. तो उसको दया आई, उसने उठाकर उसको अपने सर पर नदी के पार रख दिया. तो दूसरे भिक्षु को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है, हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है। उसने उससे बात करनी छोड़ दी, इतना क्रोधित हो गया, बस पूरे दिन यही चिंता रहती कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए, पांच दिन उसने अपने मित्र से बात ही नहीं की, पांचवें दिन उससे रहा नहीं गया। जब क्रोध की जो सीमा है वो चरम पर पहुंच गई तो उसने अपने मित्र को बुलाया और कहा कि मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा मित्र बोलो मैंने क्या गलत काम किया है। तो उसने कहा आज से पांच दिन पहले तुमने उस कन्या को उठाकर अपने सर पर रखा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका मित्र मुस्कुराते हुए उससे बोला कि मित्र मैंने तो आज से पांच दिन पहले उसे केवल पांच मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले पांच दिनों से उसे सर पर उठा के घूम रहे हो। और यही हमारे जीवन के अंदर होता है। ताली बजी ना, ताली क्यों बजी? क्योंकि हमें पता है हम भी यही कर रहे होते हैं, है ना, कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ, है ना, ऐसा लगता है जब मन के अंदर ऐसा होता है हाँ हाँ देखो ये तो मेरी कहानी कर दी ना इन्होंने, हमारी सबकी यही कहानी है, आज से पांच साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसे कभी माफी नहीं कर सकता, समय आने दो मैं उसे सीधा कर दूंगा। हम लोग कहते हैं किसे किसी को सीधा कर सकते हैं जब दुनिया ही गोल है, आप किसी को सीधा कर ही नहीं सकते, सीधा केवल आप अपनी विचारधारा को कर सकते हैं, है ना। जिंदगी में मन के अंदर ज्यादा चिंताएं, ज्यादा टेंशन को हार्बर मत करिए। क्यों हम लोग अपने सर पर ऐसा बोझा धोते रहते हैं, उसने ऐसा किया मैं उसे देख लूंगा, और ऐसा नहीं, आजकल साइंस हमारे पास है तो अरे पता है उसने ऐसा किया था, फोन उठाया, दूसरे व्यक्ति को बोला, तीसरे व्यक्ति को, और 5-10 मिनट में छोटी सी बात का हम लोग नेगेटिव एनर्जी बना देंगे, बड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, और फिर जब वो व्यक्ति सामने आएगा तो हमें ऐसा लगेगा जैसे उसको बस एकदम पकड़ के खा जाए और वो भी घबरा जाता है। तो परमात्मा यही कहता है, ब्रह्मा कुमारी में बड़ी सुंदर बात बाबा यही कहते हैं और दादी बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि पहाड़ का राई और राई का रुई बनाकर उसको फूंक मारकर जिंदगी से उड़ा दो। और हम लोग दुनिया में क्या करते हैं, रुई का पहले राई और राई का पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ जब बन जाता है फिर हम लोग कोप भवन में चले जाते हैं, फिर लड़ाई होती है। और आप एक बात आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, जब हमारा मन चिंताग्रस्त होता है, जब टेंशन हमारे मन के अंदर आ जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा होता है, बताइए कौन हो रहा होता है सबसे ज्यादा परेशान, कौन, खुद हो रहे होते हैं, है ना, खुद हो रहे होते हैं, दूसरे व्यक्ति को जो भी हो रहा हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने मन के अंदर नेगेटिव एनर्जी लाकर अपने आप को चिंतित कर रहे होते हैं, तभी हम लोग कभी गुस्सा हो जाएंगे, एकदम चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। मैं आपसे एक बड़ी प्रैक्टिकल और सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप लोग आंसर करेंगे, आप सभी से पूछता हूं, कई बारी जब दो लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, कई बार लड़ाई हो जाती है ना, हम लोग ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से बोलते रहते हैं, होता है ना, कभी कभी हम लोग तेज ऊंची आवाज में बोल देंगे, और दूसरी जगह पर दो लोग जब आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, शांति हो गई ना, ऐसी शांति का अनुभव किया है आपने कभी? ऐसा शांत हमारा मन होना चाहिए। बाबा बहुत सुंदर बात कहता है कि मन को इतनी शांति में ले आओ एक एक सेकंड के अंदर, जैसे कब्रिस्तान के अंदर आवाज ही नहीं होती, बिल्कुल मन शांत, बाहर कुछ भी हो रहा हो, जब इस शांति की हम लोग धीरे धीरे अनुभूति करेंगे तो जीवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। हाँ, तो दूसरी बात मैं बोल रहा था, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन लोगों को एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्यार से एक दूसरे को बात कह देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, खड़े तो एक दूसरे के पास ही हैं लेकिन दो लोग अपनी बात को कहने के लिए चिल्ला रहे हैं और दो लोग प्यार से एक दूसरे से कह देते हैं, कोई आंसर करेगा इस चीज को, सोचा है आपने कभी इस बारे में? कोई भी, ये हम सभी के साथ होता है, जोर जोर की बताइए ना, बोलिए बोलिए बताइए, क्या कहते हैं जी? वेरी गुड, कितनी सुंदर बात, अब आप देखिए बहुत सुंदर बात इन भाई साहब ने बताई कि जब दो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो शारीरिक रूप से तो वो एक दूसरे के पास खड़े होते हैं लेकिन उनका मन और उनके दिल एक दूसरे से करोड़ों मील दूर होते हैं। तो अपने मन की आवाज दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जब दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो चाहे वो पास ना भी खड़े हों, दूर भी हों, लेकिन हमारा मन करीब होता है तो हम धीरे से अपनी बात को कह देते हैं, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी कहते हैं, अरे मैं तुम्हें अभी तो याद कर रहा था और तुम्हारा फोन बज गया। इसे कहते हैं हमारा मेंटल कनेक्शन, हमारा मेंटल कनेक्ट। तभी परमात्मा कहता है कि अपने मन के अंदर से अगर हम लोग नेगेटिव एनर्जी को, चिंताओं को हम लोग खत्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती चली जाएगी। माइंड जो है कंप्यूटर प्लेट की तरह है, उस कंप्यूटर प्लेट पे हम लोग जितनी पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे उतना हमारी इंटेलेक्ट क्लैरिटी होती चली जाएगी और हम लोग पॉजिटिव एनर्जी का एक सूत्र जो है वो बनते चले जाएंगे। चौथी एक्सरसाइज जो हम सब लोगों को बहुत जरूरी करनी है, लिव सिंपली इन अवर लाइफ, लाइफ को बहुत सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड रखिए। आज मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि हमारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, हम लोग इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्जॉयमेंट हमारा वीकेंड पर कहाँ होता है, पूरे वीकेंड काम करेंगे, ओ आई वर्कड वेरी हार्ड, पाँच दिन मैंने बहुत काम किया, अब मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, अब मैं एक बढ़िया घड़ी खरीदने जा रहा हूँ, अब मैं अपने एक बढ़िया कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, मैं अपनी खुशी को, अपनी शांति को, अपने प्यार को किस में ढूंढता हूँ, मैं अपने कपड़ों में ढूंढता हूँ, मैं एक सुंदर पिक्चर के अंदर मैं ढूंढता हूँ, मैं अपनी शांति, अपनी इन्जॉयमेंट को अपने घड़ी के अंदर मैं ढूंढता हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ों को जो मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स में एक्चुअली नहीं होती हैं उसी के अंदर मैं ढूंढता रहता हूँ और तभी वो मुझे केवल क्षण भंगुर यानी टेम्परेरी सुख देती हैं। और जैसे ही मैं मंडे ट्यूसडे वापस काम पर आता हूँ फिर मेरी लाइफ के अंदर तनाव आ जाता है। तभी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताना चाहूँगा कि जब सिकंदर जो है वो पूरे विश्व को जीत कर वापस जा रहा था और भारत से वापस जा रहा था, तो उसने एक अपने सेनापति को बुलाया और उसने कहा कि मैं भारत से एक नायाब चीज़ वापस ले जाना चाहता हूँ, तुम बताओ मैं यहाँ से क्या लेकर वापस जाऊँ। तो उसके सेनापति ने कहा कि साहब, यहाँ के जो महात्मा होते हैं वो बहुत महान हैं, उनकी विचारधारा बड़ी श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप यहाँ के महात्मा को ले जाइए, वो वहाँ के लिए एक नायाब चीज़ होगी। तो उसने कहा पकड़ के लाओ यहाँ के एक महात्मा को। तो एक महात्मा को पकड़ कर उसके सामने लाया गया और जैसे ही महात्मा आया तो सिकंदर ने कहा कि आपको मेरे साथ मेरे देश पर चलना है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपके साथ कहीं पर नहीं जाऊंगा। सिकंदर एकदम क्रोधित हो गया, उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर उसके गले पर रखी। उसने कहा कि तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सिकंदर विश्व विजेता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो महात्मा जो है वो मुस्कुराता रहा और सिकंदर को देखकर बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सिकंदर एकदम हैरान हो गया, उसको आज तक ऐसा किसी ने बोला नहीं था। और महात्मा ये भी उससे बोला कि अभी आपने दो बातें बोली हैं और दोनों बातें आपने बिल्कुल गलत बोली हैं। तो सिकंदर तो एकदम बिल्कुल, उसने अपनी तलवार नीचे की और उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैंने अभी दो बातें बोली हैं और दोनों बातें गलत बोली हैं। तो महात्मा ने मुस्कुराते उससे कहा, सिकंदर महान, आपने अभी पहली बात बोली कि आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपने ये बात बोली आप मेरे शरीर के तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं पर मेरे बिलीफ के, मेरे आत्मा के, मेरी विचारधारा के टुकड़े टुकड़े आप कभी नहीं कर सकते, वो हमेशा मेरे साथ जीवंत ही रहेगी। और दूसरी बात महात्मा ने उससे बोली, आपने कहा कि आप विश्व विजेता हो बट मेरे हिसाब से आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर की आंखों से आंसू आ गए, उसे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला था। उसने अपनी तलवार नीचे करी और उसने कहा कि महात्मा आपने ऐसा क्यों बोला। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि सिकंदर, क्रोध को मैंने वश में किया है और इस वक्त क्रोध ने आपको वश में कर रखा था, तो इसलिए आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, आप विश्व विजेता तो हो ही नहीं। तो सिकंदर ने उस समय अपने सेनापति को क्या कहा, कहा कि जब मैं इस संसार से जाऊं तो मेरी कब्र के बाहर मेरा हाथ ऐसे खाली रखना ताकि लोगों को पता चले कि जिस व्यक्ति ने संसार को जीता था जब वो इस संसार से गया था वो खाली हाथ गया था। दैट इज वाई लाइफ को अनकॉम्प्लिकेटेड रखना, लाइफ को सिंपली जीना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए मैं एक लाइन आपको बताता हूँ जो हमेशा आप अपने साथ रखिएगा, और वो लाइन बहुत सुंदर है, अपने साथ नोट भी कर कर रखिए, अपने मस्तिष्क के अंदर नोट भी कर कर रखिए, जिससे हमें पता लगेगा कि एक बारी गालिब से किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है, तो उसने बहुत सुंदर आंसर किया और उसने क्या कहा कि बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में, बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर हमको करना पड़ा, यही हमारी जिंदगी की कहानी है। तो लाइफ को हमेशा अनकॉम्प्लिकेटेड हमको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आप क्या समझते, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, चाहे अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, जाएगा व्यक्ति खाली हाथ ही। पांचवी और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए, इजीनेस लाने के लिए, टेक आउट टाइम फॉर योर रिलेशंस, है ना, टाइम नहीं है वो नहीं है, अपने अंदर अपने बच्चे को कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए दीजिए, हमेशा जिंदगी के लिए अपने लिए समय जरूर निकालिए। आजकल प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है कि आज लोगों को, बच्चों को कंप्यूटर गैजेट्स की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर गैजेट से ज्यादा आज लोगों को, बच्चों को हमारे टाइम की जरूरत है, हमारे समय की जरूरत है। आज हम लोग कहेंगे मैंने अपने बच्चे को सब सुविधाएं तो दे रखी हैं डॉक्टर साहब, उसके पास बढ़िया से बढ़िया रूम है, उसके पास एसी है, बेस्ट स्कूल के अंदर वो पढ़ता है, उसको मैंने आईफोन दे रखा है, उसके पास कंप्यूटर है, उसको मैं एयर कंडीशन बस में भेजता हूँ, अब बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप आज बच्चों को समय देते हैं, या बच्चों के विचारों को, या अपनी फैमिली के ही, बच्चों को छोड़ दीजिए, अपने माता पिता के विचारों को, उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे पास समय है, नहीं समय है। हम लोग कहते हैं जब बच्चे आते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना होता, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जब हम लोग अपने परिवार को समय नहीं देते, अपनी फैमिली मेम्बर्स को समय नहीं देते, तो उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका जो विचारधारा है वो अपने मित्रों से ज़्यादा मिलती है जिनके साथ वो ज़्यादा समय देते हैं, जो उनकी बातों को समझता है, और जो उनकी बातों को ज़्यादा समझता है उनके साथ उनका इमोशनल कनेक्ट होता है, नहीं, जो मेरी बातों को ज़्यादा समझेगा उसके साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर फैमिली जो होती है, घर होती है, उससे डिसकनेक्ट डेवलप होना चालू हो जाता है, और फिर मेरा जो रिलेशन है वो प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं हो पाता, वो केवल मटेरियलिस्टिक रिलेशन माता पिता भाई बहन और हस्बैंड वाइफ का हो जाता है। वाइफ अलग लगी रहेंगी कि मेरी किटी पार्टीज हैं, मेरे सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं गरीब लोगों में खाना बाँट रही हूँ, मैं ऐसा एक्टिविटी कर रही हूँ। मैं समझता हूँ और सभी लोग समझते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या आज हम लोग साथ बैठकर, मैं आप सब लोगों को केवल एक एक्सरसाइज देखता हूं देता हूं, और केवल उस एक्सरसाइज को आप यदि करेंगे तो आप देखिए आपका परिवार ही एक गुलदस्ता, महकता हुआ गुलदस्ता बन जाएगा। और एक एक्सरसाइज, केवल ये एक्सरसाइज है कि दिन में आप सभी लोग अपने परिवार के अंदर प्रण कीजिए कि एक समय का भोजन आप सब लोग बैठकर साथ करिए, ये नहीं कि बच्चे अलग अपना टेलीविजन चलाते हुए खाना खा रहे हैं, माता पिता अलग खा रहे हैं, उनका खाने का समय अलग, उनका भोजन अलग, एक भोजन बने और साथ बैठकर एक दूसरे से बात करकर उस चीज़ को समझिए। आप देखिए जब एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होता है, बातें होती हैं, तो एक दूसरे के भाव प्रकट होते हैं, तकरार होती है लेकिन इमोशनल कनेक्ट डेवलप होता चला जाता है। तो ये जो दूरियां हमारे, आज क्यों काउंसलर्स और फैमिली काउंसलर्स बनते चले जाएंगे, हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी हेल्पलाइन है, 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं अरबों केस रोज फोन हमारे पास आ रहे हैं अवेकनिंग के अंदर भी, जहां लोगों की फैमिलीज टूट रही हैं। कारण क्या है कि ईगो प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे के आगे समय नहीं देते हैं, अपने ईगो को दूसरे के आगे ज्यादा बड़ा रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि जितना जितना वृक्ष बड़ा होता चला जाता है उतना ही वो फलदार होता चला जाता है। एक अच्छे वृक्ष की खासियत ये नहीं होती कि वो ऊंचा हो, एक अच्छे वृक्ष की खासियत ये होती है कि वो सबको छाया देता है। तो अपने जीवन के अंदर जरूर समय निकालिए। आप मानते हैं नहीं, कहीं ना कहीं हो रहा है हमारी फैमिलीज के अंदर डिस्कनेक्ट, मानते हैं सभी लोग या नहीं, बताइए होता है या नहीं, होता है। सभी के साथ अगर हम नहीं भी मानेंगे तो भी ये होता है। रात को 11 बजे कोई खाना खा रहा है, रात को 2 बजे कोई खाना खा रहा है, समय नहीं है, 10-10, 11-11 बजे तक क्लिनिक रोज चल रही है और हम लोग कहते हैं इतने बिजी हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन परमात्मा ये कहता है बिजी रहिए लेकिन समय बीच बीच के अंदर जरूर निकालते चले जाइए। बिजनेस आउटसाइड, इजीनेस इनसाइड, दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और खुशनुमा जीवन बनाइए। देखिए जिंदगी खुशी का नाम है। मैं यहां पर भी देख रहा हूं कि जब से हम सुन रहे हैं तो 100 तो नहीं 60-70% लोगों के चेहरों के ऊपर धीरे धीरे स्माइल आती चली जा रही है, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे अभी भी ऐसे सिले हुए हैं जैसे किसी ने डंडा मार के यहाँ पे बिठा दिया और जब तक डॉक्टर मोहित का लेक्चर नहीं खत्म होगा यहीं बैठे रहना भाई। अरे ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात मैं बताता हूं, हर जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है मेरे दोस्त, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो जीवन के अंदर केवल खुशी को आप बनाए रखिए। देखिए हमारे ब्रह्मा कुमारीज के अंदर, सिस्टर हमारे ब्रह्मा कुमारीज के अंदर बहुत सुंदर बात कही जाती है। दादी कहती हैं कि जिस जीवन के अंदर खुशी है उसके जीवन के अंदर भगवान है। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर खुश वही व्यक्ति रह सकता है जिसने परमात्मा को प्राप्त किया हो। और आप यही जो अभी डॉक्टर गिरीश पटेल भी आपको बता रहे थे, आप कल से सुन भी रहे हैं, आपने दादी को भी देखा, ये देख रहे हैं ना आप, ये बैठे हुए, ये बहन बैठी हुई, ये कर रहे, बाकी भाई बहन हमारे अंदर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये भाई सेवाधारी बैठे हुए हैं। आप में से कोई भी आइए उठकर इनकी जेब को टटोलिए, आपको अगर 1 रुपया भी मिल जाए तो आप हमें बताइएगा। लेकिन इनके चेहरे ऐसे स्माइलिंग रहते हैं, सर्विंग रहते हैं जैसे ये लोग दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हों। क्यों? क्योंकि हाँ ताली बजाइए ना सभी के लिए, इतनी सेवा आप लोगों के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा इनके जीवन के अंदर आया है। परमात्मा का प्यार जब जीवन के अंदर आ जाता है ना तो उस जीवन के अंदर किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, जीवन के अंदर खुशियां आती चली जाती हैं। तभी दादी क्या कहती हैं, दिल खुश मिठाई खाओ। हम लोग भी ब्रह्मा कुमारीज में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब सवेरे आप उठो बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाओ ना खाओ लेकिन चेहरे के ऊपर एक स्माइल जरूर, मुस्कुराहट जरूर बना कर रखो। जो भी व्यक्ति आए, जैसा भी व्यक्ति है, बनावटी स्माइल नहीं होनी चाहिए कि इससे मतलब है तो 12 इंच की स्माइल आ गई, मतलब नहीं है तो 2 इंच की स्माइल आ गई चेहरे पे, ऐसा नहीं। लेकिन एक नेचुरल मुस्कुराहट हमारे जीवन के अंदर जरूर होनी चाहिए क्योंकि खुशी तब हमारे जीवन के अंदर आएगी जब हमारा मन लाइट होगा, हमारा मन बड़ा रिलैक्स होगा, कंफर्टेबल होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर खुशी आती चली जाएगी। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं आपके समक्ष आज हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई करना चाहूंगा, व्हाट ब्रह्मा कुमारीज इज ऑल अबाउट। एंड इन सब एक्सरसाइजेज का जो आधार स्तंभ है वो है गोइंग ऑन अ वेकेशन। सभी लोग वेकेशन पे जाना चाहते हैं? सभी लोगों को घूमने का मन करता है? नहीं बताइए, हाँ या नहीं? करता है ना? मेरे को टाइम मिले तो, मेरे को तो मैं कहूंगा 2 बारी में वेकेशन लेता हूं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग कहते हैं हम लोग रोज वेकेशन लेते हैं। और रोज वेकेशन की बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो कई बार हर 6 घंटे में भी वेकेशन ले लेते हैं। और कई लोग तो वेकेशन के इतने अभ्यासी हैं कि हर लोग 2-2 घंटे के अंदर भी वेकेशन लेते चले जाते हैं। तो ये वेकेशन बड़ी सुंदर वेकेशन है। इस वेकेशन को, इस हॉलीडे को हमको समझना चाहिए क्योंकि वेकेशन पर हम लोग क्यों जाते हैं? हम लोग रिलैक्स होने के लिए जाते हैं ना, हम लोग इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। और हमारा मानना यही है कि हिमालय पर जाकर, हिल स्टेशन पर जाकर हमारा मन तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, हमारा माइंड बड़ा पीसफुल हो जाता है। लेकिन ये रिलैक्सेशन, इस रिलैक्सेशन की बात नहीं है, ये रिलैक्सेशन है अपने मन के अंदर रिलैक्सेशन की। अब आप देखते जाइए कि ये वेकेशन जो होती है हमारे अपने मन की गहराइयों के अंदर जाने की वेकेशन है। और मैं आप सब लोगों को, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मुझको इस तरह याद करना है, परमात्मा से एनर्जी लेनी है। लेकिन कैसे याद करूँ, क्यों मैं इस चीज़ को याद करूँ? आज ज़िंदगी के 40-50-60 साल निकल गए, मेरी ज़िंदगी खुशनुमा भी गई, थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई, लेकिन इस चीज़ को याद करने से मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्या नया हो जाएगा कि जीवन खुशनुमा बन जाएगा? अगर मैं ये समझ लेता हूँ कि आज जो मेरे को चलाने वाली शक्ति है, जिसको साइंस आज कहती है कि वो बीइंग है, तभी हम लोगों को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बॉडी नहीं कहा जाता, ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है ना, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स कहा जाता है। साइंस में इसको गॉड स्पॉट भी कहा जाता है, साइंस इसको साइकी भी कहती है, साइंस इसको कॉन्शियसनेस भी कहती है, साइंस इसको स्पिरिट भी कहती है, अध्यात्म इसको सोल भी कहता है, अध्यात्म इसको आत्मा भी कहती है, अध्यात्म इसको रूह भी कहता है। जब शरीर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी जब चल रही है तो हम कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड इज लिविंग। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो वो अपने नाम की आइडेंटिटी को खो देता है और हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मिस्टर खन्ना की बॉडी पड़ी, हम कहते हैं ये डेड बॉडी पड़ी है, इसको उठाकर आप ले जाओ और जला दो या दफना दो। तो क्या चीज़ हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली जो हमको चला रही है, जो ये कहती है कि मैंने अपनी आँखों से ये देखा, मैं आँखों ने ये नहीं देखा, जो ये कहती है मैं अपने हाथों से ये किया, वो ये नहीं कहती मैं हाथों ने ये किया, वो ये कहती है कि मैंने अपने मुंह से ये चीज चखी है, वो ये नहीं कहती मैं मुंह ने ये खाना खाया, वो ये कहता है कि मैंने अपने कानों के द्वारा सुना, वो ये नहीं कहता कि मैं कान ये सुन रहा हूं। तो वो कौन अंदर बैठा बैठा बोल रहा है कि ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। वो ये कह रहा है कि मैं अपने मुंह के द्वारा खा रहा हूं, मैं अपने आंखों के द्वारा देख रही हूं, मैं अपने कानों के द्वारा सुन रही हूं, मैं अपने पांव के द्वारा चल रही हूं, लेकिन ये सब मेरे ऑर्गन्स हैं जिनको मैं यूज कर रही हूं, मैं खुद ये नहीं हूं, मैं इनकी कंट्रोलर हूं। तभी उसको कहा जाता है, जिसको साइंस, जो हम कभी आगे अलग लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसको कहा जाता है आत्मा। तभी इसको आप देखेंगे हर धर्म, हर वेद, हर शास्त्र, अलग अलग धर्मों के यहाँ पर भाई बहन लोग आए हुए हैं आप लोग, हर धर्म, हर वेद, हर शास्त्र में परमात्मा को क्या कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है, परमात्मा को सुप्रीम सोल कहा जाता है। किसी भी धर्म, किसी भी वेद शास्त्र में परमात्मा को परम शरीर नहीं कहा जाता, उसको सुप्रीम बॉडी नहीं कहा जाता। यदि वो सुप्रीम बॉडी नहीं है, यदि वो परम शरीर नहीं है, परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, तो हम सब उसकी संतान, बॉडी होंगे या सोल होंगे, आत्मा होंगे या शरीर होंगे, सभी लोग बताइए जोर से एक बारी, आत्मा होंगे, नेचुरली हम लोग आत्मा होंगे। तो हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि हमको ये ज्ञान नहीं आज तक था। और आत्मा बड़ी सिंपल रूप से कार्य करती है, बहुत प्रैक्टिकल रूप से कार्य करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा सोचता है, बुद्धि हमारी डिसीजन लेती है, और संस्कार यानी हमारे जो हैबिट्स वो हैं बन जाती हैं, जिसके द्वारा हमारी वैल्यूज आती हैं, तब हमारी वैल्यूज की बात आती है। तो चाहे किसी भी धर्म के हम हों, किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र के हो, किसी भी दुनिया के कोने के अंदर के हो, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, हम सब के अंदर वो सुंदर ज्योतिर्मय विद्यमान आत्मा इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा, जिसका लोकस आज साइंस भी प्रूव कर चुका है एलिमिनेशन स्टडीज के द्वारा, वो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है ही है, केवल उसको समझने की जरूरत है। अब वो आत्मा हर एक के अंदर बड़ी प्योर है। जब हम उसके ऊपर कट चढ़ा देते हैं नेगेटिविटी का, तब हम लोग इम्प्योरिटी या नेगेटिव कार्य करते हैं, लेकिन बेसिकली हर व्यक्ति की आत्मा जो है वो पीसफुल, शांतमय, ब्लिसफुल, हैप्पीनेस, लविंग, पावरफुल, नॉलेज और प्योर है। तो ये शक्ति हम सब लोगों को हमारे अंदर बेसिकली और इनेटली है, जिसके बारे में आप लोग अनुभव करेंगे भी। और आप एक बात बताइए कि जब हमारा मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है या हमारी लाइट जब चली जाती है, तो उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए, किससे कनेक्ट करेंगे मोबाइल फोन को, किससे कनेक्ट करेंगे बताइए, चार्जर से करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे ना। इसी तरह जब लाइट चली जाती है तो हम उसको जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। जब आज हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, हमारी मन की शक्ति, कहते ना सब कुछ जानते हैं ऐसा होना चाहिए, पर हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो अगर हम लोग आत्मा को चार्ज करना चाहेंगे तो क्या हमको महात्मा से जोड़ना होगा, क्या हमको देवात्मा से जोड़ना होगा, क्या हमको पुण्य आत्मा से जोड़ना होगा, या हमको परमात्मा से जोड़ना होगा? बताइए सभी लोग, परमात्मा से जोड़ना होगा। और आज हम लोग परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कंकड़ पत्थर, अलग अलग जगह जाकर हम लोग परमात्मा से भीख मांगते हैं, हे प्रभु केवल एक सेकंड के लिए मेरे जीवन में आ जा तो मेरा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। तो परमात्मा से जोड़ने के लिए आत्मा और परमात्मा का जो वो सुंदर जोड़ है, जिसके बारे में आप आजकल परसों के अंदर, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, वो जोड़ जो होता है, वो योग जो होता है, उसी को हम लोग मेडिटेशन या राजयोग की प्रक्रिया कहते हैं। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज यहां पर बताता हूं। आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं और ध्यान से मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। आप सभी लोग यहां बैठे बैठे अपने घर को देखिए, जिस घर में से आप लोग आए हैं, क्या आप लोगों को अपना कमरा दिख रहा है, हाँ या नहीं? जिसमें आप सोते हैं बताइए, हाँ या नहीं? बिल्कुल, घर का कमरा दिख रहा है। क्या वो कमरा यहां पर इस वक्त है या नहीं? इस वक्त नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके घर में आपका क्लोजेस्ट है, आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी, उस व्यक्ति को आप लोग देखिए, चाहे वो हो या नहीं, क्या उसकी शक्ल आपके सामने आ गई या नहीं? आ गई ना। वो व्यक्ति यहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और तीसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि उस व्यक्ति के साथ कल परसों जब आप यहां पर नहीं थे, आपकी क्या वार्तालाप हुई थी, क्या लेन देन हुई थी, उसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल या कोई ना कोई फीलिंग्स जरूर आ जाएंगी। तो ये कौन कर रहा है? ना वो घर इस समय यहां पर है, ना वो व्यक्ति इस समय यहां पर है, ना वो वार्तालाप, वो मोमेंट इस समय यहां पर है, लेकिन मन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो यहां बैठे बैठे एक सेकंड के अंदर उड़ान लेकर आपको चाहे राजकोट, चाहे दिल्ली, चाहे अहमदाबाद, चाहे कहीं, चाहे साउथ इंडिया, आपको अपने घर पर ले गया। इसी तरह ये 100% फिजिकल मेडिटेशन कहलाती है। इसी तरह जब आत्मा की योग जो है, फ्लाइट जो है, परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, वो उसकी तरफ चला जाता है, तो वो योग, वो जोड़, वो कम्युनियन, वो बहुत सुंदर राजयोगा मेडिटेशन कहलाता है। उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के अनुभव करते हैं। परमात्मा को हम अपना बच्चा बना सकते हैं, हम अपना मित्र बना सकते हैं, हम अपना संबंधी बना सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं, हम चाहें तो अपना टीचर भी उसे बना सकते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, आप देखेंगे जब बल्ब चलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसी तरह जब हम लोग राजयोगा मेडिटेशन में रिलैक्स होकर हम लोग बैठते हैं, उस परमात्मा की यथार्थ पहचान और आत्मा की यथार्थ पहचान हमको मिल जाती है, तो मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो ये कोई भी परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत जरूरी है कि हम बेसिक और ग्रास रूट लेवल का चेंज जरूर लाएं। अपनी यथार्थ पहचान किसको चेंज करना है? शरीर को चेंज नहीं, अपनी सोच को चेंज करना है। सोच किसका पार्ट है, मन किसका पार्ट है? हमारी आत्मा की एक वर्किंग फैकल्टी है, तभी हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सुंदर, आप ये पूरे दिन आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा को एक्सपीरियंस करना, उसको कार्य में लाना। इसको आप लोग एक स्ट्रेस की तरह मत लीजिए। हम लोग भी अपने जीवन के अंदर कार्य करते हैं, कितने लोग यहाँ पर ब्रह्मा कुमार भाई बहन आए हुए हैं जो कार्य करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल और अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है, इसको हमें अपने जीवन के अंदर जीना है, ये जीवन जीने की एक कला है। तो इसको जरूर अनुभव कर जाइए। जब हम इसको अपने जीवन के अंदर अनुभव कर लेंगे तो जीवन के अंदर वो जो मैं बोल रहा था ना, मैजिकल मेलोडीज, वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाती हैं। तो कौन करेगा इस गैप को ब्रिज? क्या मुझे करना होगा या कोई व्यक्ति और आके करेगा? कौन करेगा बताइए? कौन करेगा? हमें ही करना होगा। मैं आपको एक बात बहुत सुंदर बताना चाहूंगा, और बहुत सुंदर जो मैं अपने जीवन में भी हमेशा साथ में रखता हूं, कि ऐसे ही कुछ लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि सर हमारे पास समय नहीं है महात्मा जी, हम परमात्मा को अपने जीवन में कब याद करें? तो उन्होंने कहा तुम बिल्कुल समय ठीक कहते हो, आजकल परमात्मा को याद करने का समय किसी के पास नहीं है, तुम्हें परमात्मा को रोज याद नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो केवल मरने से एक दिन पहले परमात्मा को याद करना। बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया, ज्यादा याद नहीं करेंगे, एक दिन पहले याद करेंगे, काम हो जाएगा। तो उनमें से एक व्यक्ति उठकर बोला, पर महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो महात्मा जी बोले, फिर आज याद कर लो, क्योंकि आज के समय में कल का किसी को पता नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि परमात्मा शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाना। और हम लोग सब क्या करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एवरीबॉडी, हम लोग क्या करते हैं, टुडे वी यूज गॉड एज अ स्पेयर व्हील इन अवर लाइफ। हम ब्रह्मा कुमारीज में वी यूज गॉड एज अ स्टीयरिंग व्हील इन अवर लाइफ। स्पेयर व्हील और स्टीयरिंग व्हील में फर्क हो जाता है। स्पेयर व्हील कब काम आता है, जब जरूरत होती है। और स्टीयरिंग व्हील कब काम आता है, वो तो हमारी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा रहा होता है। तो परमात्मा को बजाइए ताली, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हमें अपने जीवन के अंदर अनुभव करनी, इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना अति 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 आवश्यक है। परमात्मा से ही बिजनेस करेंगे तो जीवन में परिवर्तन कब आएगा, आ ही नहीं सकता। हे परमात्मा, हे प्रभु, ये करा देना, बस मैं आ रहा हूं वैष्णो देवी, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पक्का आ रहा हूं मैं, मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे तिरुपति जी जाना है, मुझे जरूर करके आना है। अरे परमात्मा को अपने जीवन के अंदर अपना लो, उसको आने दो, उसको कंट्रोल बना लो, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी की मोटर एक्सेलेटर ऑटोमेटिकली जो है वो दौड़ता चला जाएगा। और कहा जाता है, इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि आज से करीब 80-90 साल पहले जब ये ब्रह्मा कुमारी स्टार्ट हुआ था, इतना ऑपोजिशन हुआ था, एक व्यक्ति परमात्मा शक्ति थी और केवल एक ब्रह्मा बाबा था, लेकिन वो सारी दुनिया अलग खड़ी थी, एक बाबा अलग खड़ा हुआ था। लेकिन जब मैटर सही था, कॉन्शियंस सही थी, शक्ति परमात्मा की थी और राह सही थी, तो आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं सब इस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जीवन को परिवर्तन कर रहा है। ये आज हमारे जीवन का आधार स्तंभ जो है वो बन चुका है। और ये कोई एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं दे रहा आपको, ये कोई और स्पीकर्स आपको नहीं दे रहे, ये शक्ति है, ये परमात्मा शक्ति है। ये परमात्मा शक्ति ही इतनी शक्ति सब ब्रह्मा कुमारी कुमार भाई बहनों के अंदर भरती है कि उनका जीवन ऑटोमेटिकली बोलता है। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा अंत में अपनी वाणी से विराम देने से पहले, कि अपने जीवन के अंदर परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करिए। शायद ये आज का मोमेंट आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ये जो आपने आज सुना, आप शायद आगे दोबारा सुने या ना सुने, लेकिन आज परमात्मा आपको एक चॉइस देता है कि क्या तुझे आज मेरा हाथ पकड़ना है, तो तू पकड़ ले। अगर तूने पकड़ लिया तो तेरे जिंदगी का रिमोट कंट्रोल जब मेरे हाथ में आ जाएगा, तो तेरे को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली चलती ही रहेंगी। इजी लाइफ और बिजी लाइफ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, लाइफ ही जब हमारी कंफर्टेबल बन जाती है। तो सभी लोग तैयार हैं, हाँ या नहीं? तो खुशनुमा चेहरे के साथ केवल 20-30 सेकंड हम लोग साइलेंस के अंदर बैठेंगे। मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए, क्षमा चाहूंगा, केवल 5 मिनट हम लोग 20 सेकंड के लिए साइलेंस में बैठेंगे आँख खोलकर, और परमात्मा से हम लोग एक प्रण करेंगे कि हाँ, आज के बाद मैं अपना जीवन परिवर्तन करता हूँ और तेरे को अपने जीवन का कंट्रोल देने।
नेक्स्ट सेशन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को। प्लीज डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे इस मेडिकल विंग के यंगेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं और आप फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी में काम करते हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड जीबी पंत हॉस्पिटल से किया है और आपका स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही इंटरेस्ट है। बचपन से ही इन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी को, स्पेशली राजयोगा मेडिटेशन को अपनाया है और लगभग पिछले 20-25 साल से ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। और इनको आगरा रत्न अवार्ड भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने 2006 में दिया है और आपको 2005 में जीबी पंत हॉस्पिटल ने ही आपकी अच्छी सर्विसेज के लिए आपको नवाजा है। आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मेडिकल साइंस में यूज़ करें अच्छी तरह से, तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं बहुत अच्छी बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को बोलूँगा कि आप अपना वक्तव्य करें। बहुत बिजी रहते हैं, आपको मालूम है मेट्रोपोलिस सिटी में दिल्ली बॉम्बे जैसी लाइफ सिटी में कैसी लाइफ होती है बिजी, तो वही आप बताएंगे कि बिजी होते हुए भी कैसे इजी रहना है, ये आपको बताएंगे। आज का टॉपिक है इजी लाइफ फॉर द बिजी डॉक्टर। डॉक्टर मोहित गुप्ता,
ओम शांति एंड गुड इवनिंग। ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी अच्छी सी बातें अभी हम लोग सुन रहे थे।